ऐसे ऐसे मिनिस्टर हैं देश के लायक जिनको दो आदमी दोनों से मिलकर उठाते हैं और उठा करके राज सिंहासन पर बैठाते हैं। कार में बैठाना हुआ तो दो आदमी लगते हैं, यही घर नहीं छोड़ते, स्वयं कहां से छोड़ेंगे। अनेक रोग दुख बुढ़ापा कठिनाई है और न्यूज पेपरों में हजारों गालियां रोज दी जाती है, फिर भी नहीं छोड़ते, फिर भी टिके हुए। कितना बड़ा त्याग था नगरसी भर, कैसे भक्ति के कारण हुआ, स्वयं छोड़े घर और सकल संपत्त निकेता स्वनिकेता। उनका निकेत कैसा था, सकल संपत्त निकेत, उनका निकेत समस्त संपत्तियों का निकेत था। विश्व में या ब्रह्मांड में जितना धन हो सकता है, सुख की सामग्रियां जो भी, सब कुछ उनके घर में था राजभवन में। सकल संपत्त निकेत स्वनिकेत। राजर्षि भरत ने त्याग किया तो कोई घर के झगड़े से उब करके त्याग नहीं किया। तो चलो घर में झगड़ा हो रहा है तो अब क्या करेंगे, अब कोई इस कान में दाखिल हो नारी मुई गृह संपत्ति नासी मुड़ मुड़ा भय संग। स्त्री मर गई और घर की संपत्ति ही चली गई तो अब चलो अब छोड़ करा करते और संन्यास ले लो, क्या कोई सहारा रहा है। इस तरह का संन्यास, इस तरह का त्याग को धैर्य नहीं रखते। समस्त संपत्तियों से पूर्ण अपने राजभवन का त्याग किया, स्वयं त्याग किया। इसका अर्थ है कि पुत्र रो रहे थे कि नहीं पिताजी अभी आप रहिए, सारी प्रजा चाह रहे थे, और जिनके नाम से इस देश का नाम बदल गया तो प्रजा कितना स्नेह करती होगी, कोई नहीं चाहते हैं कि आप वन में जाए, आप तो पूर्ण भक्त हैं, आप घर में ही पूर्ण भक्ति कीजिए रहिए। लेकिन एक दिन छोड़ना चाहिए, आज का आदमी तो तुरंत बहाना बना देगा, दिस इज प्रीचिंग, प्रीचिंग के पर्पज से मैं घर में टिका हुआ त्यागना नहीं चाहेगा, एक अद्भुत बहाना मिल गया। वो आसक्ति बस नहीं छोड़ रहे हैं तो प्रीचिंग के लिए नहीं छोड़ रहे हैं, ऐसा कौन एक और छोड़ कर रह ही नहीं सकते। तो छोड़ना चाहिए, ये सीखने की बात है। अवश्य यह बात है कि अब छोड़ करके जाएंगे कहां, ये प्रश्न अब खड़ा हो रहा है, क्योंकि वन जो है वो बड़े दुर्जनों से भर गया, वन तो प्राय कट गया और वनों में फल के वृक्ष है नहीं, कंदमूल कुछ है नहीं, वनों में फैक्ट्रियां भर गई कहां जाएंगे, तो अंततः आप जा नहीं सकते। लेकिन फिर भी कुछ जिम्मेवारी छोड़ करके और विशेष रूप से भगवान का जाप पाठ ग्रंथ पढ़ना, ये सब करना चाहिए, इसका यही अर्थ है। अधिक से अधिक समय लगाना चाहिए भगवान, घर पर भी रहे और कभी कभी छोड़े वृंदावन घूमे। भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार कहा करते थे कि कभी कभी मरमर करके देखो कि क्या तुम्हारे बिना बिगड़ जाता है घर का वो कहते थे कि 10 दिन घर छोड़ करके जाओ तो मान लो कि मर गए और मर करके ही देखो कि क्या हो रहा है। कभी कभी तो ऐसा होता भी है कि आदमी यात्रा में जा रहा है, बहुत मनोरथ रखा है, योजना बनाया है, लेकिन एक्सीडेंट हो जाता है और अस्पताल में जाकर के मृत्यु, वास्तव में मरा हुआ है आदमी, तो कभी भी मृत्यु हो सकती है, ये तैयार तो रहना ही चाहिए। कभी कभी त्याग करके देखना चाहिए कि हमारे बिना क्या हो जाता है, और देखते देखते जब देखे कि अब बिल्कुल ठीक है तो
यात्रा भगवान हरि अद्याति निज जनात्सल्यत इच्छानुरूपेण जत्र वाव भगवान हरिः अद्याति तत्रत्यानां निज जनानां वात्सल्येन सन्निधाप्यत इच्छानुरूपेण यत्र वाव भगवान हरिः अद्याति तत्रत्यानां निज जनानां वात्सल्येन सन्निधाप्यत इच्छानुरूपेण
फलत है अपने राज्य का त्याग कर वन में चले गए भगवान की और सुदृढ़तर और अनन्य भक्ति करने के लिए। घर छोड़कर वे कुलहाश्रम में गए। कुलहाश्रम यह आज के समय में बिहार में पड़ता है, हरिहर क्षेत्र इसको कहते हैं आज के लिए। उस समय यह बंद था और कुल ऋषि वहां सर्वप्रथम निवास किए थे, उसको इसीलिए उसको कुलहाश्रम कहते हैं। कुलह ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, जैसे नारद जी ये शंकरादि वशिष्ठ आदि ब्रह्मा के पुत्र हैं, उसी तरह से कुलह मुनि भी ब्रह्मा जी के बहुत तेजस्वी पुत्र हैं, वो आज भी हैं। तो उन्होंने वहां आश्रम बनाया था उस सुकुवन में, वह भगवत क्षेत्र है, भगवान का क्षेत्र है। शालिग्राम शिलाएं वहां की चक्र नदी में आज भी मिलती हैं, शालिग्राम भगवान पाए जाते हैं, बहुत पवित्र क्षेत्र माना जाता है। तो वहां गए तो उसी क्षेत्र की महिमा बता रहे हैं। जब भगवान की आराधना करनी हो तो घर छोड़कर भगवान के धाम में जाना चाहिए, यह शिक्षा मिलती है, जहां भगवान रहते हैं और भक्त रहते हैं। तो जत्र हवा भगवान हरि अद्यापि तत्रत्या नाम निज जनानाम वात्सल्येन सन्निधात्यत इच्छानुरूपेण। जत्र शब्द उस स्थान की विशेषता बता रहे हैं, जत्र जिस हरि क्षेत्र में, उसको हरि क्षेत्र कहते हैं वास्तव में, लेकिन बाद में पता नहीं कुछ लोगों के आग्रह से उनमें हर जोड़ दिया गया तो हरिहर क्षेत्र कहते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवतम में उसको हरि क्षेत्र कहा गया। कालक्रम से विवाद उत्पन्न हो जाता है, जैसे हरिद्वार शब्द है लेकिन उसको कुछ समय के बाद लोगों ने हरद्वार कहना चालू किया, हरद्वार, क्योंकि केदारनाथ जी उधर रहते हैं तो उनका भी द्वार वहां है। यह केवल एक अपना आग्रह मात्र है, सारा भारतवर्ष कृष्ण क्षेत्र है, हरि क्षेत्र है वास्तव में, और सब देवता आदि उनके दास हैं। वास्तविक कुलहाश्रम का नाम है हरि क्षेत्र। तो उस हरि क्षेत्र में वे गए, हरि का क्षेत्र, भगवान का धाम, जहां भगवान आज भी भक्तों को दर्शन देते हैं। आज भी सुखदेव गोस्वामी आज से 5000 वर्ष पहले बोल रहे हैं, लेकिन श्रीमद् भागवतम में यह आती हुई परंपरा को हम भी अद्यापी लगा सकते हैं। आज भी भगवान श्री कृष्ण को यहां हरि कहा जा रहा है, तो प्रसिद्ध नाम है श्री कृष्ण का, भगवान विष्णु का। तो हरि का अर्थ होता है कि भगवान परम सुंदर हैं, भक्तों के नेत्र और मन का को हर लेते हैं, प्रेम दिया हरे मन। जो भी व्यक्ति कृष्ण को देखता है तो उसके मन को श्री कृष्ण प्रेम देकर हर लेते हैं, खींच लेते हैं अपने सौंदर्य और माधुर्य से, इसलिए उनको हरि कहते हैं, चुरा लेते हैं मन को। और हरि का अर्थ है जो शरणागत के दुख का हरण कर लेते हैं, संसार बंधन हर लेते हैं, किसी भी प्रकार का दुख भगवान हर लेते हैं, केवल शरण मात्र से, केवल प्रणाम मात्र से, नाम के उच्चारण मात्र से वे अपने भक्तों का दुख हर लेते हैं। ये उनका स्वभाव है। इस संसार में कोई ऐसा महान व्यक्ति हो जो केवल नाम लेने से, उसकी शरण लेने से दुख हर ले, तो उसकी कितनी प्रसिद्धि होगी। ये भगवान अपने भक्तों के या किसी भी व्यक्ति के जो आश्रित हो जाता है उसका दुख हर लेते हैं, इसी से भगवान को रोज प्रणाम करने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम भगवान पर कृपा करते हैं आरती करते हैं या उनको भोग लगा करते हैं, वो कृपा करते हैं। मंदिर बनाया गया है, वास्तव में भगवान की सेवा तो होती है, लेकिन वास्तविक सेवा हम ही लोगों की होती है, भगवान हमारा दुख हरते हैं। ऐसा देखा भी जाता है, मंदिरों में लोग जाते हैं तो भगवान को थोड़ी वस्तु अर्पित करते और बहुत ज्यादा मांगते देवी देवताओं के यहां से, बस हमारा काम कर दीजिए तो हम आपको एक सेर मिठाई चढ़ाएंगे या इतना देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। भगवान में यह बात नहीं, भगवान का स्वभाव है कि आप एक तुलसी दल भी चढ़ाएंगे तो वो उससे कोटि गुना ज्यादा देते हैं। जैसे सुदामा जी को दिए थोड़ा सा चिवड़ा खा करके और तीनों लोग जैसे संपत्ति दिया भगवान ने, जो उनका स्वभाव, इसलिए उनको हरि कहते। कोई व्यक्ति भी कृष्ण को प्रणाम कर देता है तो कृष्ण उसके विषय में सोचने लगते हैं कि इसका कोई काम करना चाहिए, तो उसके मन में जो होता है भगवान उसकी इच्छा पूरी करते हैं। कई बार भक्तों से लोग पूछते हैं हम क्या करें, हमको ये दुख है, हमको वो दुख है, वास्तव में सब आशा भरोसा छोड़ करके कृष्ण का आश्रय लेना चाहिए, वो दुख दूर कर देते हैं। इसी कारण से इनका नाम हरि है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं सर्व अमंगल हरे प्रेम दिया हरे मान, हरि शब्द का ये अर्थ होता है सर्व अमंगल हरे, सारा अमंगल दूर कर देते हैं और प्रेम देते हैं। तो हरि क्षेत्र में कुलाश्रम में, आज कुलाश्रम के उपवन में, उस वन में आज भी जो भक्त रहते हैं, तो तत्प्रत्यानाम निज जनानाम, तत्प्रत्य मतलब वहां रहने वाले भक्तों को भगवान आज भी दर्शन देते हैं और उनके साथ रहते हैं। सन्निधाप्यता, सन्निधाप्यता का आपके सन्निधि देते हैं, स्वयं ही संग मिलता है। श्री लजीव गोस्वामी इस श्लोक की टीका में कहते हैं कि चक्षुषी प्रकटी क्रियते, सन्निधाप्यता का अर्थ है कि भक्तों के आंखों के सामने भगवान अपने को प्रकट करते हैं उस क्षेत्र में। इसीलिए राजर्षि भरत अपना घर छोड़कर भगवान के धाम में गए, तो भगवान की भक्ति बढ़ानी है, भगवान से मिलन करना है, प्रेम करना है, तो जहां प्रेम बढ़ सकता है वहां गए। तो आज भी भगवान वहां भक्तों को दर्शन देते हैं, और भक्त जिस रूप में दर्शन पाना चाहते हैं उस रूप में दर्शन देते हैं, इच्छा न रूपेगा। यदि कोई यह चाहते हैं कि हमें बांसुरी बजाते हैं कृष्ण रूप में दर्शन दीजिए, तो अपना रूप प्रकट करते हैं। तो कोई कोई भक्त है जो भगवान के धनुष बाण धारी रूप को पसंद करते हैं, या शंख चक्र गदा लिए हुए भगवान के रूप को पसंद करते हैं। यह स्वाभाविक है, इस संसार में भी देखा जाता है कि यदि एक व्यक्ति बहुत बहुत रूप बनाए तो उसका कई रूप अच्छा लगता है। धोती पहन कर आया है, कोई पैजामा पहन कर आया तब भी उसको देखने में अच्छा लगता है। ये विविध रूप बनाता है, ड्रामा करता है तो अच्छा लगता है। एक ही व्यक्ति भगवान अपने को अनंत काल से अनंत रूपों में व्यक्त किए, कहीं चतुर्भुज रूप से है, कहीं द्विभुज रूप से है। तो भक्त की अपनी इच्छा होती है, हमें यह रूप बहुत प्रिय है, मैं इसे देखना चाहता हूं, तो भगवान उस भक्त की इच्छा के अनुसार उसके सामने प्रकट हो, इच्छा अनुरूपेगा, इच्छा के अनुरूप प्रकट होते हैं। और क्यों प्रकट होते हैं, इसका उत्तर सुखदेव गोस्वामी देते हैं, वात्सल्य से। वात्सल्य का अर्थ होता है स्नेह, और वात्सल का अर्थ संस्कृत में होता है बच्चा वाली गाय, बछड़े वाली गाय वत्सल। तो जिस प्रकार गौ अपने पुत्र से, अपने बछड़े से प्रेम करती है, उसको चाटती है, सहलाती है और अपना दूध पिला करके बच्चे को पोसती है, इस तरह भगवान अपने भक्तों से स्नेह करते हैं। तो वात्सल्य का स्नेह सन्निधाप्य, स्नेह के कारण प्रकट होते हैं। तो भक्तों के सामने भगवान आते हैं तो भार मानकर नहीं आते हैं, या अपना कर्तव्य मानकर नहीं आते हैं, सहज स्नेह बस आ जाते हैं। जैसे गाय अपने बच्चे के पास आती है तो सहज स्नेह से आकर्षित होती है। हम लोग देखे हैं गाय चराने में कि बच्चे या चरवाहे गाय को रोकते हैं, लेकिन जो नया नया बच्चा दी रहती है गाय, वो भागती है बाहर से बच्चे को दूध पिलाने के लिए, लेकिन उसको चरने के लिए वो लोग रोके रहते हैं। शाम होते होते कई बार भागती है घर की ओर, दौड़ कर आना चाहती है, तो इसको कहते हैं वात्सल्य स्नेह सबक। तो जो श्री कृष्ण की भक्ति में लग जाते हैं, समर्पण करते हैं, और खास करके किसी क्षेत्र में रहते हैं, भगवान के धाम का आश्रय लेते हैं, सब घर द्वार छोड़ करके भगवान के धाम में पड़े रहते हैं, हम कहीं नहीं जाएंगे, चाहे जो भी होना होगा यही रहेंगे, तो उनसे भगवान बहुत प्रेम करते हैं, सन्निधाप्य प्रेम करते हैं। वृंदावन या ब्रजमंडल में ऐसे बहुत से भक्त हैं जो ब्रजमंडल से बाहर नहीं जाते। जो भी होगा सुख दुख लिखा होगा यही भोगेंगे, तुम्हारे द्वार से जाएंगे नहीं। नंद बाबा की देवरी पर उनके द्वार पर बैठ करके जन्म बिता देंगे लेकिन बाहर नहीं जाएंगे। बाहर बहुत आकर्षक दुनिया है, अनेक भोग है, अनेक लोग हैं, लेकिन वो लोग जाते ही नहीं। यह भी एक बहुत सुंदर व्रत है वास्तव में, बहुत महान वस्तु। इसलिए तत्रत्या नाम लिखा गया, वहां के जन हरि क्षेत्र के जनों को भगवान स्नेह से दर्शन देते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ऐसे मानते हैं कि ये मेरा घर है और मेरे घर में आकर के कोई आश्रय लिया है तो उसे दर्शन देते हैं। जब आश्रम पदानी उभय तो नावीर दशक चक्र ही चक्र नदी नाम सरित प्रवरा सर्वता पवित्र ही करोगी। अब उस क्षेत्र का वर्णन कर रहे हैं, वो क्षेत्र कैसा है तो उसे आश्रम पदानी, पदानी बहुवचन में है, उस हरि क्षेत्र में बहुत से ऋषियों के आश्रम हैं और उन समस्त आश्रमों को चक्र नदी सब तरह से पवित्र करती है, वहां घूम करके बहती है। स्वाभाविक तीर्थ में गंगा जी के किनारे या जमुना जी के किनारे ऋषियों के आश्रम होते हैं, भगवान की लीलाएं होती हैं, जैसे वृंदावन में, ब्रज में, जमुना के तट पर सभी वन हैं, 12 वन पश्चिम में हैं और 5 वन पूर्व में वृंदावन में, जहां जहां लीला कर श्री नंदन द्वादश कानन द्वादश कानन। इसी तरह भारत वर्ष में और भी भगवान के बहुत से क्षेत्र हैं, दक्षिण भारत में और सब जगह जहां नदियों के तट पर भगवान की लीलाएं हुई हैं और आज भी वहां ऋषि जन भक्त जन जाकर अपना आश्रम बनाते हैं, रहते हैं वहां धाम में। वहां नदी जो है उसको पवित्र करते हैं, आश्रमों को पवित्र करते हैं बहुवचन में। जहां भगवान की लीला हुई रहती है उस भूमि में अपने आप भक्त जाकर के रहना चाहते हैं, भागते हैं, क्योंकि उस भूमि का संबंध विशेष रूप से भगवान के साथ रहता है। वृंदावन में भी बहुत से ऋषि मुनि हैं, आश्रम बनाते हैं, रहते हैं, तो स्वाभाविक है। तो उसको चक्र नदी कहते हैं क्योंकि ऐसे पत्थर, ऐसी शिलाएं पाई जाती हैं उस नदी में जिसको चक्र का चिन्ह होता है, सुदर्शन चक्र का, और ऊपर और नीचे दोनों तरफ पत्थर में नाभि का आकार होता है, नाभि होती है, नाभि का अर्थ होता है जैसे हम लोगों के पेट में नाभि होती है, थोड़ा धंसा हुआ पत्थर दोनों तरफ, और चक्र का चिन्ह होता है, वो भगवान का साक्षात स्वरूप माना जाता है, उसको शालिग्राम करते हैं। आज भी हम लोग देखते हैं कुछ भक्त जाते हैं तो वहां से लाते हैं शालिग्राम, लाते हैं देते हैं, इतनी पवित्र नदी है, इसीलिए उसको सरित प्रवरा कह रहे हैं। सरित प्रवरा, सरिताओं में श्रेष्ठ चक्र नदी ऋषियों के आश्रमों को पवित्र करती हुई बहती है। पूर्ण क्षेत्र होने से प्राय सभी ऋषि मुनि वहां जाकर निवास करते हैं। भगवान को पाने के लिए भगवान के धाम का आश्रय भी एक बहुत बड़ा महत्व रखता है, इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु ने 5 महान भक्ति में से एक मथुरा वास करना है। भागवत श्रवण, भागवत के अर्थ का आस्वादन, नाम संकीर्तन और श्री विग्रह की सेवा, धामवास और साधु संघ, ये 5 सबसे महान शक्तिशाली साधन। ऐसे बहुत से भक्ति के आइटम है लेकिन सबका संहार करके 500 भगवान ने किया, चैतन्य महाप्रभु ने किया। तो एक मथुरा वास, ये कोई आज की परंपरा नहीं है, पहले से ही भक्त लोग आश्रय लेते हैं। राजर्षि भरत अपनी राजधानी छोड़कर भगवान के धाम में गए, तो वहां जाकर के वे किस तरह भगवत आराधन किए उसका वर्णन 11वें श्लोक में कर रहे हैं। तस्मिन् वाव किल सह एकलह पुलहाश्रमोपवने विविध कुसुम किसलय तुलसीकांबुभिः कंद मूल फलोपहारैश्च समीहमानो भगवत आराधनम विविधता उपरत विषयाभिलाषः उपभृतोपशमः परां निवृत्तिम् अवाप। तत्र गतेन भर्तेन कृतं भगवत आराधनं दर्शयति तस्मिन् इति। ह का अर्थ है यह प्रसिद्ध बात है, वाव का अर्थ है ही और किला का अर्थ होता है निश्चय, निश्चय ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। तत्र गतेन भर्तेन कृतम भगवत आराधनम दर्शय तस्मिन पुलहाश्रम बने, उस पुलहाश्रम में हरिक्षेत्र में, हरिक्षेत्र के उस उपवन में, वन में एकला राजर्षि भरत अकेला रहते थे। एक दिन ऐसा समय था जब पूरे विश्व के लोगों के साथ रहते थे, राजा थे, यह करना हुआ करना, नाना प्रकार से यज्ञ करना, समाज जुटाना, हमेशा लोगों के साथ ही रहना था। एक दिन ऐसा समय था और ऐसा राजर्षि एक दिन एकला अकेले, अकेले होने के बाद राजर्षि भरत ने कभी ऐसा अनुभव नहीं किया कि हाय मैं निरानंद हूं। उनका आनंद और अधिक बढ़ गया अकेले होने पर, क्योंकि भगवत आराधना में रहते थे। एकला शब्द यह बहुत महत्वपूर्ण। राजर्षि भरत जब घर छोड़े तो ऐसा नहीं कहे दस बीस चेला चलो मेरे साथ, मेरे सामान ढोया करना, अरे कुछ त्याग होना चाहिए, कभी अकेले भी रह करके देखना चाहिए कैसे रहा जाता है कि नहीं। राजर्षि थे, पूरे विश्व के अकेले रहने लगे, हम लोग दो चार दिन भी अकेले नहीं रह सकते। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, भगवान के लिए सब कुछ छोड़ा जाता है, सब कुछ छोड़ा जाता है। ये देखिए राजर्षि की विशेषता, सब कुछ होता कि कला हो गया, अकेले हो गया, पुलहाश्रम उपबने, उपवन में रहते थे, वन में रहते थे, तो वहां क्या करते थे, भगवत आराधनम की हमाना, समी हमाना, सम की हमाना, समय की हमाना, भगवान की आराधना करते रहते थे, पूजा करते रहते थे। किस चीज से पूजा करते थे, विविध कुसुम किशलय तुलसी काम्बुभि और कंद मूल फलोक हारश्च, विविध पुष्पों से, किशलय नए नए पत्तों से, तुलसी दल से और अम्बुभि जल से, पत्तम पुष्पम फलम तोयम, इससे पूजा कर रहे हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, विविध कुसुम किसलय तुलसी कांब भी कंद मूल फलोपहारश्च भगवत आराधनम समूह। जब राजा थे तो बड़े बड़े यज्ञों से पूजा कर रहे थे, तो पूजा करने का स्वभाव था, लगे रहते थे आनंद से। किसलय, ये किसलय निकाले, वृक्षों के नए नए पत्ते भी भगवान को अर्पित किए जाते हैं। तो कुसुम किसलय तुलसी का और अमृत, विविध कुसुम अनेक प्रकार के पुष्प होते हैं, अनेक प्रकार के किसलय तुलसी और जल, इसके साथ ही साथ कंद मूल फल ये सब उपहार अर्पित किए जाते हैं भगवान को। तो राजर्षि भरत उस उपवन में जो कुछ सुलभ था उसी से भगवान की पूजा करते थे। राजा थे तो बहुत भारी भारी यज्ञ करते थे, रत्न समर्पित करते थे भगवान को, विविध भोग, और जब वनवासी हो गए, वन में हो गए, फिर भी पूजा कर रहे हैं, तो विविध कुसुम किसलय तुलसी काम्बुभि और कंद मूल फलोपहारश्च, कंद मूल और फल के उपहार। कंद एक प्रकार का मूल होता है, जमीन के भीतर रहता है, जो वर्तुलाकार का होता है, गोलाकार, गोलाकार बहुत बड़ा होता है, आज थोड़ा थोड़ा लेकर के लोग किसी तीर्थ में बेचते हैं कंद, तो वो कंद भगवान को अर्पित करते थे। और मूल, मूल जमीन के अंदर रहता है और किसी भी आकार में हो सकता है, और फल वन में रहने वाले फल तोड़ तोड़ करके भगवान को अर्पित करते थे। पहले के युगों में फल बाजार से नहीं लेना पड़ता था, सब जगह फल सुलभ अर्पित करते थे। सम्यक ई हमान, भगवान की पूजा में लगे रहते। विविधता, विविध का अर्थ है भक्ति अनुकूल पदार्थों को ग्रहण करते थे। यदि कुछ खाते थे तो विविध का अर्थ है कि भगवत प्रसाद खाते थे, यहाँ यह हम जो कंद मूल फल भगवान को अर्पित करते थे वही खाते थे, और कभी भी किसी वृक्ष का फल मूल आदि नहीं खाते थे, जो अर्पित करते थे वही खाते थे, इसको विविध कहते थे। टीका में लिखा गया है विविधता का अर्थ है शुद्ध आहार, शुद्ध आहार,
मनुष्य जहां भी रहेगा वहां कुछ न कुछ खाएगा पिएगा खा करके पूजा करेगा। शरीर के लिए आहार जरूरी है तो विविध आहार करना चाहिए। विविध का अर्थ है होता है विवेक पूर्वक छाट करके अलग। जो खाने के लिए बहुत सी वस्तु इस संसार में है लेकिन कृष्ण का भक्त भगवान का भक्त कभी भी भक्ति के प्रतिकूल पदार्थों को नहीं खा सकता। भगवत प्रसाद खाते सशुद्ध हो गए। हरिशाल से उपरत विषयाभिलाष विषय अभिलाष उपरतो जस्य स रूप रस गंध शब्द आदि विषयों की लालसा इनकी बिल्कुल नहीं रही। वो तो राज्य करते थे उसी समय नहीं। जो व्यक्ति राजा है सम्राट है और राज छोड़ करके वन में गया तो निश्चित ही विषय अभिलाषा उस समय नहीं थी। यदि अभिलाषा होती तो अपना पद त्याग कर वन में क्यों जाता? कोई न कोई बहाना करके राजधानी में बना रखता, कुछ न कुछ बहाना उसके सामने आ जाता। विषय अभिलाषा उपरत पूरी पूरी समाप्त है। हम लोग तो मन से भी इसका चिंतन नहीं कर पा सकते हैं, कल्पना नहीं कर सकते हैं कि एक बार पूरे विश्व का राजा रहा हुआ व्यक्ति और इस समय एकांत वन में न ये कोई न्यूज पेपर पढ़ रहा है न फोन कर रहा है कुछ नहीं, और उसी के पुत्र राजा हैं। वन में कुछ भी तकलीफ हो सकता है लेकिन कभी ये नहीं सोचे कि हमारा बेटा राजा है, ये फोन तो कर दूं और सामान पहुंचा देगा, हमारे पास कोई हमें दिक्कत नहीं है। पहले के राजा लोग इस तरफ त्याग करते थे, जानते थे हमारा बेटा राजा है लेकिन वन से अपनी राजधानी में नहीं जाते, अपने पुत्र के राज्य के अंदर ही किसी वन में रहते थे लेकिन कभी नहीं जाते थे क्योंकि वे अधिक सुखी थे वन में और उन्हें विषयों की अभिलाषा नहीं होती थी। कुछ देखें कुछ सुने कुछ मान सम्मान प्राप्त करें और ये करें वो करें। आजकल कहीं आप जाएं लोग खूब अच्छा स्वागत नहीं करते हैं तो कहते हैं कोल्ड रिसेप्शन हुआ है, ठंडा स्वागत हुआ और उसके विपरीत है वार्म रिसेप्शन गर्म रिसेप्शन, मतलब खूब बाजे गाजे के साथ और माल्यार्पण करते हुए गीत गाते हुए बहुत से लोग आगे प्रणाम करें तो इसको वार्म रिसेप्शन। क्या होगा इससे आत्मा को? ये तो जाल है वास्तव में, ऊपर से ये एक प्रकार का बंधन। वे जब राजा होंगे तो कितना उनका वार्म रिसेप्शन होता होगा उस समय, सारा विश्व ही उनका चरण चूमने के लिए तैयार था सब कुछ, लेकिन आज वन में हो गए विकृत विषय अभिलाषा। ये उनको इसलिए अभिलाषा नहीं रहे कि हमारा स्वागत ऐसे हो हमारा ये हो हमारा वो हो ये। हमने सुना है कि एक लखनऊ का नवाब था वो जूता पहनने में अंग्रेजों द्वारा पकड़ लिया गया, अंग्रेज लखनऊ में चढ़ाई किए और सब लोग भाग गए और जो नवाब था उसके पास उस समय कोई सेवक नहीं था क्योंकि सेवक आदि भी सब डर कर भाग गए, कोई नहीं था और कहता था जूता पहनाओ जूता पहनाओ जूता पहनाओ, कोई पहनाने वाला नहीं था और कभी अपने से जूता पहना नहीं था जिंदगी में, कभी अपने से जूता नहीं पहना। तो आज भी कोई व्यक्ति इस तरह का व्यवहार करता है शान शौकत से रहता है तो हम लोग क्या कहते हैं लखनऊ के नवाब हो गए हो क्या? लखनऊ के नवाब हो गए हो तो इस तरह कुछ लोग हैं अभ्यस्त तो हो जाते हैं, कोई हमें जूता पहनाएगा तब हम सुख से रहेंगे, कोई हमको चामर दिलाएगा पंखा दिलाएगा ये हमारे साथ चलेगा तब हम बड़े आदमी माने जाएंगे हम सुखी रहेंगे, परंतु कोई न रहे अकेले हो जाए तो कोई आनंद ही नहीं। राजा से भरत कैसे थे, कितना ऊंचा हृदय उनका था कि भगवान के प्रेम से भरे थे और उपरोक्त विषयाभिलाषा, उपरोक्त विषयाभिलाषा क्यों थे, क्यों उनको विषयों की अभिलाषा नहीं थी, क्योंकि कुछ भृतोपशम। उपशम का अर्थ होता है भगवान निष्ठा। कृष्ण में चित्त इतना लगा हुआ था, कृष्ण के सौंदर्य माधुर्य में उनका चित्त इतना लगा था कि उसके कारण परम निवृत्ति अवापर परम निवृत्ति परम आनंद प्राप्त करते थे। परम निवृत्ति यह निवृत्ति का अर्थ है प्रीति भक्ति, भगवान से मिलने वाला परम सुख को मिल रहा था इसलिए संसार के भोगों की अभिलाषा नहीं थी, तो संसार की कोई अभिलाषा नहीं थी। इतना अधिक सुख मिल रहा था कि उस सुख के आगे संसार का सुख कुछ भी नहीं। श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसायन सिंधु में लिखा है कि भक्ति का सुख है।